लेकिन ये स्प्लिट जजमेंट है जो दो सीनियर जजेस थे और फ्यूचर चीफ जस्टिसेस भी हैं, जस्टिस आसिफ खोसा साहब नेक्स्ट चीफ जस्टिस हैं, सीनियर मोस्ट हेड कर रहे थे बेंच को, और जस्टिस गुलजार जो जस्टिस आसिफ खोसा साहब के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे, इन दो सीनियर जजेस ने तो बिल्कुल फैसला वाज़े दो टोक दिया कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब सादिक और अमीन नहीं रहे और आर्टिकल 62F में ये जो है हिट होते हैं, इसलिए ये नाअहल मुतसबर होंगे और इनको डी नोटिफाई किया जाए एज मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली और प्राइम मिनिस्टर के तौर पर भी ये फारिग हो गए। टीम ने यही कहा, टीम ने ये नहीं कहा कि ये सादिक और अमीन है, टीम ने ये भी नहीं कहा कि ये सादिक और अमीन नहीं है, टीम ने कहा कि ये जो मामलात हैं, जो इल्जाम हैं या जो पनामा लीक
लोग सवाल ये पूछ रहे हैं निज़ाम के बारे में, इंसाफ के निज़ाम के बारे में, कि जिस मुल्क में आयान अली अगर एक मॉडल हैं, मिलियन डॉलर्स की बात है, मनी लॉन्ड्रिंग की बात है, उनको ये निज़ाम सज़ा नहीं दे सकता, आसिम साहब हैं उनको सज़ा नहीं दे सकता, और शर्जील साहब जो हैं उनको सज़ा नहीं दे सकता बल्कि ताज पहनाता है, उस मुल्क में वज़ीर आज़म को बराह रास्त स्विटिंग प्राइम मिनिस्टर को कैसे वो इन्वेस्टिगेट करेगा, कैसे वो ये निज़ाम उनको कटहरे में ला सकता है, या उनके बच्चों को क्या कहेंगे आप?
आपने सारे उन केसेस का जिक्र किया जिसमें मैं खुद वकील हूँ और मैंने
इसीलिए किया
कर रहा हूँ। देखिए जहाँ तक अयान अली का ताल्लुक है, उसके अपने पैसे थे और वो एयरपोर्ट पर अभी उसने चेक इन भी नहीं किया था, डिक्लेरेशन जो कस्टम में देना होता है अभी वो भी नहीं दिया था, वो कस्टम जो जो चेकिंग का काउंटर होता है वहां भी नहीं पहुंची थी और अभी
अगेन टेक्निकल ग्राउंड्स पे बचा लिया गया,
तो इसलिए छोड़ दें वो, और ना ही वो जो है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम थे तो सजा किस लिए होती, वो तो उनके ऊपर मुकदमा ही गलत था।
खान साहब आप क्या इसी फैसले की तवक्को कर रहे थे नंबर एक, और फिर जो फैसला हुआ है इसकी पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस आप क्या देखते हैं अपने लिए भी और दूसरी जो फरीक है मुस्लिम लीग नवाज उसके लिए भी?
पहली बात तो ये है कि इस फैसले की मुझे तवक्को नहीं थी, मैं समझता था कि सुप्रीम कोर्ट कोई वाज़े फैसला करेगी एक तरफ, या क्वालिफाइड है या डिसक्वालीफाइड है, कोई ना कोई फैसला तो होना चाहिए था, तो इसलिए ये जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है वो मामले को इल्तवा में डालने वाली बात है, और मैं समझता हूँ कि इससे मामला जो है जो सारी कौम की एक तवक्कुआत थी उसके खराब बरक्स हुई है, और अब ये मामला इल्तवा में चला जाएगा और कुछ कह नहीं सकते। ठीक है 7 दिन का टाइम दिया, लेकिन ऐसे मामलात में कभी टाइम पर लोग मुकम्मल नहीं कर पाते, तो सियासी असरात यकीनी तौर पे हैं। एक तो ये है कि बेशक दो ही जजेस ने वाज़े तौर पर कहा है इनके खिलाफ, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के लिए कि 5 में से 2 जज कहते हैं कि ये क्वालिफाई नहीं करते, डिसक्वालीफाइड हैं, तो ये उनके लिए कोई मॉरल जवाब नहीं, उनको क्लीन चिट नहीं मिली।
सही,
या तो क्लीन चिट दे देते ना सारे 5ों जज के लिए, नहीं नहीं इनके खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ है, तो फिर उस सूरत में तो इनको कंटिन्यू करना चाहिए था एस चीफ प्राइम मिनिस्टर। लेकिन इस फैसले के बाद जिसमें इनको क्लीन चिट नहीं मिली है, जिन्होंने तीन ने कुछ फैसला दो के साथ एग्री नहीं भी किया, तो उन्होंने भी कहा कि बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं।
सही।
और उनके जवाब मौजूदा जो उनके सामने मटेरियल है उससे नहीं निकलते।
ठीक है,
लिहाजा
उज़्मा बुखारी साहिबा बहुत शुक्रिया आपका, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज आपने हमें ज्वाइन किया। अदालत का पनामा स्कैंडल के ऊपर, पनामा केस के ऊपर फैसला और मज़ीद तहकीकात कराने के लिए JIT बनाने का फैसला, इस फैसले से बज़ाहिर ये लगता है कि केस ख़त्म तो नहीं हुआ, अभी तहकीकात होंगी, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत जिस तरह इसको अपनी सुरखरुई बयान कर रही है, क्या उसकी वजूहात हैं?
जी बहुत शुक्रिया, इसकी चंद जो बड़ी वजूहात मैं आपके साथ ज़िक्र कर देती हूँ। एक तो ये है कि हमारे उस स्टांस की जो है वो खता है, आपको याद होगा लास्ट ईयर जब पनामा आया था तो 21 अप्रैल को साहब ने लेटर लिखा था सुप्रीम कोर्ट को कि कमीशन कायम कर दिया जाए जिसके ऊपर ये प्रूफ हो जाए, और एक साल उस एक साल के अंदर इमरान खान साहब जो है वो क्या क्या उन्होंने नहीं किया और किस तरह से मुल्क में जो है डिस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश की गई, और अल्टीमेटली वही फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरी बात यह है कि जो मरियम नवाज की صاحبہ کے خلاف ایک پوری کیمپین بنائی گئی ہے, ایک وہ ہوا کہ یہ بس جو ہے وہ ان کو نااہل قرار دے دیا جائے, یہ ڈسکوالیفائی ہو جائے, ان کا کوئی ذکر بھی نہیں ہے ان کے اوپر انویسٹیگیشن کرنے کے حوالے سے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ہمیشہ سرنڈر کرنے کی بات کی کہ ہم یہ تمام چیزیں جو ہیں اس اوپر ہم قانون کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں. جو سپریم کورٹ کا اسکوپ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے 184(3) کے تحت, سپریم کورٹ کے پاس یہ جورسڈکشن ہی نہیں تھی, ہم نے بہرحال وہ چیلنج بھی نہیں کی, لیکن اس کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ کسی کو بلا لیتی, وہ کسی نے انویسٹیگیٹ کر لیتی, جو کہنا تھا شاید ان کے پاس کاغذات تھے وہ ان کو.
تو اب یہ جے آئی ٹی کے پاس کیسے اختیار ہوگا؟
جو اوپن اینڈ شٹ کیس لے کے گئے تھے جنہوں نے جو ہے وہ ناقابل تردید ثبوت پیش کیے تھے, ان کے لیے یقیناً ایک بہت بڑی سختی کا معاملہ ہے, جنہوں نے پرائم منسٹر کی ڈائریکٹ جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن مانگی تھی اس کورٹ سے.
صحیح, لیکن